सुषुम्ना नाड़ी जितनी सपष्ट सबल होती है उतना ही मंत्र शक्ति संकल्प शक्ति सिद्धि शक्ति जागृत होती। तो वो इसका दूप वो उस नाड़ी को खोलने में प्राणायाम और कुछ हम प्रयोग जानते हैं वो प्रयोग, तो वो नाड़ी खुलती है तो फिर साधक की थोड़ी सी मेहनत में उसे साधना का लाभ मिलता है। तो जैसे अपन जंप लगाते हैं तो देखने में तो मनोरंजन है विनोद जैसा है, लेकिन जब जंप लगाते हैं तो दाएं बाएं पैरों के नाड़ियों में एक प्रकार का एकीकृत हो जाता है। इससे फिर कभी कभी बैठेंगे तो देखेंगे कि दोनों नाड़ी अथवा दोनों नथुनों से श्वास आता है। जब दोनों नथुनों से श्वास चलता हो तो उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते। वो सुषुम्ना नाड़ी सुबह के समय आसानी से खुली रहती है, संध्या के समय सुबह सूरज उगने के पहले और चंद्रमा की किरण दिखना बंद हो जाए धरती पर, सूरज उगना बाकी है, तो उस समय हवामान में ओजोन गैस होता है, मंत्र शक्ति जागृत होती है, सुषुम्ना जागृत होती है। और ऐसे वातावरण में अगर ये धूप करके फिर प्राणायाम और ध्यान करें तो मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, अपना संकल्प जल्दी सिद्ध होता है। जबी जबी सिद्ध अपना आशीर्वाद कब फलता है, जब वो रानी नाड़ी खुली होती है उस समय आशीर्वाद फलता है, उसी वक्त वरदान श्राप आशीर्वाद। तो योगी क्रुद्ध होकर अगर पानी छिटर पे जात्रा नाश हो जाए तो अब उसके जो संकल्प है पानी में हजार गुना प्रभावशाली हो गया। तो जैसे अनाज को ठीक से किसान मिलाकर धरती में बोता है तो वो सौ सौ दाने हो जाता है, अगर किसी वस्तु को पानी में ठीक से मिलाओ तो उसका प्रभाव हजार गुना हो जाता है, अगर किसी वस्तु को विधिवत अग्नि में मिलाओ तो उसका प्रभाव लाखों गुना हो जाता है। जैसे गूगल तो जरा सा है, 2 ग्राम मैंने डाला लेकिन लाखों लोगों के नाक तक पहुंच सकता है इसकी सुवास। तो विद्युत के साथ वस्तु का शब्द का स्प्रेड हो जाता है, शब्द की व्यापकता हो जाती है। जैसे अभी मैं बोलता हूं तो एम्पलीफायर में विद्युत का कनेक्शन है, अब ये मेरा बोलना यहां तो तुम सुन रहे हो लेकिन करोड़ों लोग और भी सुनेंगे, अरबों लोग सुन सकते हैं क्योंकि इसको विद्युत का सहयोग मिल। अभी लाइव प्रोग्राम करने वाले आए थे तो 162 देशों में, हम तो बोलने की तो हमारी तो मेहनत उतनी की उतनी होती, लेकिन विद्युत का सहयोग यंत्रों का सहयोग मिलने से 162 देश में लोग लाइव प्रोग्राम जीवंत प्रोग्राम देख रहे थे। तो यंत्रों का और विद्युत का सहयोग मिलने से जब ऐहिक जगत में यह होता है तो ऐसे ही मंत्रों का और सुषुम्ना का आध्यात्मिक ओरा का सहयोग मिलने से आपकी सूक्ष्म सृष्टियों में आपके संकल्प के अनुसार उथल पाथल हो जाती। बरसात करना अथवा और जो कुछ महापुरुषों के जीवन में आपने हमने सुना है, ईश्वर को प्रकट करना अथवा तो ईश्वर प्राप्ति ऐसे होगी, ये यज्ञ करवा दिया और यज्ञ पुरुष प्रकट हो गए और उसी से भगवान राम जैसी अवतारी हस्ती प्रकट हुई, तो ये मंत्र की विधि साधना की विधि जानने वाले वशिष्ठ महाराज श्रृंगी ऋषि ने बताया ऐसे ऐसे यज्ञ करो, तो उत्तरेष्टि यज्ञ से यज्ञ पुरुष खीर का कटोरा लेकर आए और वही खीर कौशल्या माता आदि ने ली और भगवान राम प्रकट। तो कितनी सारी शक्तियां तुम्हारे आत्मदेव में छुपी है, तुम 2 रोटी कमाकर 2 मकान बनाकर 2-5-25 करोड़ इकट्ठा करके संसार में मरने के लिए नहीं आए हो, अपनी अमरता जगाकर परमात्मा का साक्षात्कार करने को आए हो। तुम्हारा अपना एक बार इरादा ऊंचा बना लो, आपका उद्देश्य ऊंचा बना लो, हल्के उद्देश्य में आपकी चेष्टा हल्की होगी, आपकी डिजायर हल्की होगी और आपका जीवन खत्म हो जाएगा। ऊंचे उद्देश्य में आपकी इच्छा एक ऊंची होगी तो नीची इच्छाएं सब हटती जाएगी, ऊंची इच्छाओं में आपकी ऊर्जा तो ऊंचे पद की प्राप्ति होगी जिससे फिर आपको कभी गिरने का दुर्भाग्य ना आए। भगवान कहते हैं यन लब्धवान चापारण, जिसको पाकर उसे अधिक कोई नहीं। यन लब्धवान चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु आपि विचाले, जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख भी आ जाए फिर भी आपकी शांति आपका सुख विचलित नहीं होगा। अभी तो जरा सा इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो सेठ लोगों का स्थित पना विचलित हो गया, जरा बदली आ जाए तो ऑफिसर बेचारे परेशान हो जाते, जरा सा बीमारी आए तो पहलवान और तंदुरुस्त बाँ पुकार लेते, तो जरा सा दुख भी हमारे को हिला देता है ना तो हम अहिल आत्मा में नहीं पहुंचे। जैसे तरंगों के ऊपर तिनखा बेचारा लाचार होकर नाचता रहता है ऐसी माया के तरंगों में हम अपने को खपाते रहते हैं, लेकिन माया जिससे शक्ति पाती उस आत्मा में आ जाए तो फिर तरंगे होते रहते होते रहे। इसी बात को भगवान ने कहा सर्वथा वर्तमानोपि स योगीमय वर्तते, उस सब प्रकार का व्यवहार करते हुए भी मुझी में टिका है, मुझी में वर्तन करता है। तो भारतीय संस्कृति का नजरिया बहुत ऊंचा है, मरने के बाद कोई हमारे लिए खुशामत कर देगा, हमारे लिए थोड़ा कुछ कर देगा तो हमको बिस्त मिलेगा, ऐसा भारतीय संस्कृति का मानना नहीं है, ज्ञान नहीं है। अब भी तुम्हारे हृदय में अब भी ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर इस समय तुम्हारे साथ है। इसी बात को सिख धर्म ने कहा सो साहेब सद सदा हजूरे अंधा जानत ताको दूरे, नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लखे, औखी घड़ी न देखण दे वही सतगुरु अपना बिरद समा। औखी घड़ी क्या है, दुख ही तो औखी घड़ी है, तो सतगुरु का ज्ञान और प्रसाद मिलता है तो फिर औखी घड़ी से पार की जगह पे व्यक्ति पहुंच जाता है। और पहुंचना कहीं ऐसा नहीं कि आपको उड़ना है जहाज में बैठना है, पहुंचना है जहां आप है वहीं, वो पहुंचने की जगह आपसे दूर नहीं है, हाथ आपसे दूर है, पैर आपसे दूर है, जीव आपसे दूर है, लेकिन आप अपने से दूर नहीं है, वैसा ही वो आपके साथ जुड़ी हुई परमात्मा सत्ता है। जैसे तरंग से पानी कितना दूर है, ऐसा कोई तरंग देखा तुमने जो सड़क पे दौड़ता हो, ऐसी कोई पानी की लहर देखी जो सड़क पे दौड़ती हो, पानी की लहर सड़क पे नहीं दौड़ सकती, पानी पे ही दौड़ेगी। ऐसे ही तुम्हारा मन जहां से दौड़ने की सत्ता लाता वही परमेश्वर है, अब उसको नहीं जाना और उसके द्वारा जो सत्ता मिलती जिस जिसको जानते उसे धोखा खाते, पाकर संभाल कर भी छोड़ के एक धोखा खाते, नहीं पाकर भी दुखी होके धोखा खाते। सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ किया, सो क्यों बिसरे जिन गर्भ विच राख्या, वो गर्भ में भी जिसने रक्षा की है उस परमेश्वर अपने आत्मा को क्यों बिसरा है। भूलिया जब भी आपनु तभी होया खरा, ये जीवात्मा अपने असली आत्मा परमात्मा को भूला तब ये खरा हुआ। सर्विस के लिए चिंता करता है, मकान के लिए चिंता करता है, इसके लिए चिंता करता है, चिंता से चतुराई घटे घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी चिंता चिता समान, चिंता नहीं तू चिंतन का, और चिंतन करके उसमें जरा गोता मार तो दुनिया तो तेरे लिए तो पीछे पीछे घूमेगी। काका मिटकर भतीजा क्यों होता है, खुद खुदा बन मत पुजारी और लाचार मोहताज बन। तो ये रीत अभी गूगल का धूप करना, मैं तुमको प्राणायाम सिखाता हूँ और इस रीत की थोड़ी एक अनुभूति बताता हूँ किसी फकीर की, बैठो। ये 2 प्याले जाना, बीच में रख दो, दूसरे धूपों में भी है गूगल, धूप वाले चारों तरफ धूप करो। अब गहरा सांस लो, खूब गहरा, जितना ले सकते, लेकिन पेट अंदर दबा के रखो, पेट को अंदर दबा के रखो, और शौच जाने की जगह को, लेट्रिन जाने की इंद्रिय को सकोर लो ऊपर की तरफ, श्वास रोक के रखो। 1 मिनट, जितना अधिक रोक सकते हो ठीक है, अति नहीं करना, 1 मिनट तक ठीक है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, 1 मिनट तक सांस रोको, फिर धीरे धीरे छोड़ो। छोड़ो तो सांस को बाहर ही छोड़ के रखो, पेट अंदर बाहर थोड़ा हल्का फुल्का करो, किडनी मजबूत रहे, किडनी की तकलीफ ना आए कभी, पेट की बीमारियां बढ़े नहीं, रुके नहीं, और मन पवित्र। लंबा श्वास लेना है, रोकना है, पेट अंदर रखना है, भगवान का नाम जप सके तो अच्छा है। फिर श्वास 1 मिनट के बाद बाहर छोड़ना है, छोड़ना है तो बाहर ही रहे श्वास और पेट और योनि मुद्रा ऊपर को, अंदर बाहर। पलथी मार के बैठने की अपेक्षा ऐसे बैठे ना वज्रासन में, घुटनों के बल जैसे हम बैठे ना, ऐसा बैठो। बुढ़ापे में पाचन तंत्र और पेट की तकलीफें होती है, एसिडिटी होती है बुढ़ापे में, ये करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा और एसिडिटी और ये जल्दी तंग नहीं करेगी। सिटीजन होंगे तो ये प्रॉब्लम आते हैं, उसको पहले से ही दूर रखो। श्वास किया, पेट अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर ज्यादा बाहर कम। देखो मैं कर रहा हूं, फिर श्वास बाहर छोड़, बाहर छोड़ दो तो बाहर ही रखो जितना अधिक रख सकते हैं। सारी नाड़ियों के द्वेष दोष खींच के जठरा के द्वारा सफाई, दवाइयां, इंजेक्शन, ऑपरेशन, क्यों, क्या जरूरत है? फिर से श्वास लो, खूब लो, खूब लो, पेट अंदर बाहर, अंदर ज्यादा बाहर कम। Thank you.
खूब लो श्वास, खूब 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 गहरा रोक के रखो। फिर से दोनों नथुनों से श्वास चालू हो गया। इसको बोलते सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी काम करती होगी। हो गया ना, जिसका हो गया हाथ ऊपर करो। अब क्या होगा कि इस समय जितना भी जप होगा उसका लाखों गुना प्रभाव पड़ेगा। जैसे अग्नि में जीरा की झोंक देते हैं तो उसका प्रभाव लाखों गुना दूर तक जाता है। हिंग, जरा सी हिंग का झोंक देते हैं तो कितना पड़ोसियों के नाक में घुस जाती हो, तुम्हारे घर में, घर में कमरे में, कमरे में कमरे में, कमरे में अंदर है वहां तुम्हारा किचन, और लोगों के कमरे के कमरे और नाक के अंदर तक पहुंच जाता है दिमाग तक तुम्हारी जरा सी झोंक, अग्नि का संपर्क। ऐसे अब ये सुषुम्ना हुई, अब तुम्हारी सब नाड़ियों में इसका प्रभाव और सेटेलाइट में जो ब्रह्मांड में व्यापक ईश्वरी सत्ता है उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा आपका जप संकल्प ध्यान। जैसे बीज बोते हैं ना, तो बीज अपना सारा प्रभाव, बीज को खाद पानी मिलता है तो वो बीज क्या करता है कि वातावरण में से सब कुछ ले आकर वृक्ष बन जाता है। और हजारों हजारों, एक बीज में से कितने बीज बन सकते हैं कोई विज्ञानी बता सकते क्या? एक बीज में से कितने बीज बना सकते आप? उसका कोई तोल मोल है? एक बीज बोया उसमें से कई बीज पैदा हुए, वो सब बोए तो कई हुए, फिर बोए तो कई हुए, तो कई 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 कितने कई। तो शक्ति का अनंत अनंत भंडार के साथ आपको जुड़ने का ही सुंदर तरीका। एक शर्मद फकीर थे, तो उनको ऐसा सत्संग मिल गया, साधना मिल गई, तो उनकी नमाज फिर ये ध्यान हो गया, ओम का ध्यान ये वो, और वो सिद्ध पुरुष हो गए औरंगजेब के जमाने। तो फिर वो नमाज वमाज और ये नामुल्ला मौलवी और ऐसा करो खुदा ताला राजी होंगे, ऐसा करो खुदा नाराज होंगे, इस बातों से ऊपर उठ गए। जो खुद ही है आत्मा वही खुदा है। शर्मद की ऐसी बेपरवाही की जिंदगी, बड़ी खुशहाल जिंदगी थी। शर्मद का ऊंचा ज्ञान था, ऊंची समझ थी। जैसे कॉम्पिटेटर अपना करते हैं ना एक दूसरे के माल की निंदा, ऐसे कुछ मुल्ला मौलियों ने मिलकर शर्मद के लिए औरंगजेब को फरियाद कर दी कि तो काफरों के संग में, काफर माना तुम जयराम जी की, हम उनकी निगाहों में जो अच्छे मुसलमान है वो हिंदुओं को काफर नहीं बोलेंगे, लेकिन जो नेरो माइंड के हैं और मजहबवादी हैं वो काफर बोलेंगे सुनेंगे। समझदार मुसलमान ऐसी गलती नहीं करता। तो बोले काफरों के संग में आकर शर्मद नमाज अदा नहीं करता, अरे सब जगह मेरा अल्लाह है, सब जगह मेरा भगवान है, राम है, ईश्वर है, एक ही है, एक काफरों का प्रचार करता है जहां पर ना, औरंगजेब का तो आपको पता है इतिहास, शाही फरमान है अगले जुम्मा को जुम्मा मस्जिद दिल्ली, ये दिल्ली की घटित घटना है, जुम्मा मस्जिद में शर्मन जुम्मे को मेरे साथ नमाज अदा करेगा। अब राजा के राज्य में रहने वाले एक शर्मन को सिपाही तो ले आए, नमाज अदा करने की जगह पर सब खड़े, इमाम नमाज अदा करवा रहा है और सारे लोग घुटने टेक रहे, नमाज में जैसा कुछ होता है। शर्मत ज्यों का त्यों खड़ा है, खड़े शर्मत ने थोड़ी ही देर में नमाज अदा करने वाले लोगों के बीच और औरंगजेब सुने, ऐसे ढंग से कहा, इमाम का खुदा शर्मत के पैरों तले गड़ा है, इमाम का खुदा शर्मत के पैरों तले गड़ा है, हा हा हा। इमाम का खुदा शर्मत के पैरों तले गड़ा है। ऐसा करके वो तो मस्ती से रवाना हो गए। जो भड़काने वाले थे उनको तो मौका मिल गया राजा के सामने, इतनी तोहीन हो गई अपने मजहब की, अपने अल्लाह की, शर्मत के पैरों तले खुदा ताला गड़ा है। क्या कहता है देखो, उस मूर्ख ने आदेश जारी कर दिया, शर्मत जहां मिले उसका सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया जाए। हुकुम की पैरवी हुई, शर्मत का सिर कटवाया गया। तो उस महापुरुष की मुंडी लुढ़कती लुढ़कती यमुना की तरफ जा रही थी, दूसरा कोई फकीर जान गया, बोले शर्मत दुआ की भीख मांगते, रुको रुको, राज्य सत्ता ने तुम्हारा अपमान किया है, लेकिन बेगुनाह लोग डूब के मर जाएंगे यमुना में, अगर तुम्हारा बेगुनाह फकीर का रक्त यमुना जी में मिला, यमुना जी कुपित होगी मैं जानता हूं, और यहां सारा डूब जाएगा राज्य। मुंडी रुक गई, किसी जानकारों ने जाकर औरंगजेब को कहा कि जहां पना शर्मत पहुंचे फकीर थे, उनका अल्लाह मरने के बाद मिलने वाला नहीं था, जो हर कर्मों को देखता है, हर धड़कनों को चलाने की सत्ता देता और सर्वव्यापक है, वो वेदांत सूफीवाद, हम मुसलमानों में सूफीवाद, हिंदू का वेदांत का एक शाखा इस्लामी सूफीवाद के रूप में प्रकट हुई। तो सूफीवाद और वेदांत लगभग पैरेलल चलते हैं। तो उनका खुदा मंसूर की नाई, जैसे मंसूर को ना समझ लोगों ने सूली चढ़ा दिया था, और मंसूर खरे संत फकीर थे, ऐसे ही शर्मत हो सकते। शर्मत ने कहा कि इमाम का खुदा शर्मत के पैरों तले गड़ा है, तो जहां पना इस बात का थोड़ा गौर से विचार करे, इमाम जब नमाज पढ़वा रहा था उस समय इसका प्रिय कौन था, इसका प्यारा खुदा क्या था, ये पूछा जाए, और फिर वो धरती खो दी जाए जहां शर्मत खड़ा था, तो उस फकीर के वचनों की सच्चाई का दीदार हो सकता है। इमाम से पूछा कि भाई तुम जब नमाज अदा करवा रहे थे तो तुम्हारा प्रिय क्या था, बोले मेरे मन में ये था कि लड़की बड़ी हो गई है, औरंगजेब जैसे और उनके बड़े बड़े लोग साथ में नमाज अदा कर रहे, खुदा ताला कुछ दे दे खैरात वैरात इतनी कि मैं अपनी बेटी के हाथ रंगाऊं, मतलब मंगनी करवाऊं, मेहंदी लगवाऊं, मेरी बेटी के हाथों में मेहंदी लगवाने का मेरा काम हो जाए शादी विवाह। तो उसका मतलब ये हुआ कि नमाज अर्दा कराते समय इमाम का खुदा था संपत्ति, अब शर्मद के पैरों तले गड़ा है खुदा, इमाम का खुदा धन, वो शर्मद के पैरों तले गड़ा है। शर्मद ऐसा बोले थे, खुदा तो सोने की देग निकली, अशर्फियां निकली। तो उस महापुरुष की कितनी ऊंचाई, कितना ब्रह्मांड व्यापी आत्मा परमात्मा के साथ सैटेलाइट सिस्टम। शर्मद कोई वैज्ञानिक यंत्रों से ध्यान करके नहीं देखा, बस खड़े खड़े शर्मद को एहसास हो गया कि इमाम जो चाहता है वो चीज मेरे पैरों तले गड़ी है, इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है। औरंगजेब को बाद में पश्चाताप हुआ होगा कि नहीं भगवान जाने, लेकिन धन की और सत्ता की मंदता में आकर कई मंदोत्मंत महापुरुषों को नहीं पहचान पाते और महापुरुषों से फायदा लेने के बदले उनको अपनी तगड़ी में तोलकर अपने को श्रेष्ठ साबित करते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठों से श्रेष्ठ है, ईश्वर के साथ जिनका तालमेल हो गया है, उसके लिए नानक जी कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी की शोभा ऊंचते ऊंची, ब्रह्मज्ञानी की शोभा मूंचते मूंची। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि राम जी, दुनिया में मान करने योग्य लोग एक से एक हैं। कोई धन में बड़ा है तो कोई सत्ता में, तो कोई बुद्धि कौशल में, कोई सेवा में, तो कोई किसी में। दुनिया के सब मान योग्य करने व्यक्तियों में सबसे ऊंचे में ऊंचा मान है जिसने अपने आत्मा परमात्मा को जान लिया, ब्रह्म ज्ञानी का। राम जी जैसे जंगल में सभी प्राणियों से हाथी बड़ा पाया जाता है, कीड़ी मकोड़े तो क्या, और बड़े बड़े प्राणियों से, घोड़ों से, ऊंटों से भी हाथी बड़ा प्राणी पाया जाता है। लेकिन उसके हाथी का बड़प्पन तब तक है जब तक सुमेरों के आगे वो खड़ा नहीं हुआ। ऐसे ही दुनियादारी की बड़प्पन, धन की, चक्रवर्ती राज्य की, इंद्रपद की बड़प्पन तब तक है जब तक आत्म परमात्मा के साक्षात्कार के बड़प्पन के आगे वो अपने को नहीं लाया है। तो आत्म परमात्मा का साक्षात्कार सभी बड़प्पनों की पराकाष्ठा है। इस आत्म परमात्मा को पाने का अवसर मनुष्य जन्म, इस आत्म परमात्मा के अनुभव को, आत्म परमात्मा के सुख को न पाया तो इंद्र पद पाने वाला भी अपने को आत्मज्ञानी के आगे नन्हा और कंगाल समझता है। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाकर, पाए बिना इंद्र आदि देवता भी अपने को कंगाल मानते हैं, उस आत्म पद को पाकर योगी अहंकार नहीं करता, कितनी ऊंची उपलब्धि है। पीतवा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मत्ता, उस ब्रह्म परमात्मा का रस पीकर योगी मस्त रहता। इंद्रोमपि रंकवत भाष्यत अन्यस्य का वार्ता, इंद्र का वैभव भी कंगालित जैसा लगता है उस आत्म सुख के आगे। लोग उठे उसके पहले के समय लोगों के आंदोलन, वाइब्रेशन, चिंतन की तरंगे कम होती है, तो उस समय ऋषि मुनियों की तरंगों को आप जब करेंगे तो सजाती है, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाते हैं नियम के अनुसार। तो सुबह आप सूरज उगने के पहले के समय ध्यान भजन करते तो मंत्र जागृत होता है, उस समय देवता जागृत होता है और ये सुषुम्ना का द्वार खुला रहने का अवसर होता है। तो इससे आपकी प्रार्थना उस समय जितनी आसानी से फलती है और जितनी आप आर्त भाव से प्रार्थना करते हो, सच्चे हृदय से प्रार्थना करते, प्रार्थना के शब्द और आप एक हो जाते, वो प्रार्थना फलती है। क्योंकि एक होने से आप चित्ताकाश से, चिदाकाश स्वरूप ईश्वर से, गुरु से आप आसानी से मिल जाते। जिसको कोई बड़ा काम करना या बड़ा तकलीफ मिटाना, तो सुबह के समय ये थोड़ा प्राणायाम आदि करके फिर प्रार्थना करे और शांत हो जाए। ऐसे एक एक मिनट शांत हो जाए, दिन में 9 बार प्रार्थना करे, 3-4 बार तो सुषुम्ना का द्वार कुदरती ही खुलता है। सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि को 4 बार, और बीच में भी कभी कभी खुलता है। और आर्त भाव से की हुई प्रार्थना वातावरण में चमत्कार सर्जित कर देती। अच्छा, अब गूगल के लिए मैं शास्त्रीय एक बात बता देता हूं तुमको। गूगल का धूप रोग नष्ट करने का मंत्र सहित अगर उच्चारण के किया जाए तो वो मंत्र गूगल के धूप के साथ स्प्रेड होकर घर के वातावरण को और रोगी को मदद करेगा। अथर्ववेद में आया, कांड 19वां अध्याय 5वां सूक्त 38वां। वेद में जो बात लिखी है वो महत्वपूर्ण बात होती है, साधारण बातें नहीं होती वेद में। इस गूगल रूपी इसके अधिष्ठाता देव ऋषि अथर्व, देवता गूगल और छंद अनुष्टुप है। न तम क्षमा अरुधन्ते नैनम शपथो अश्नुते यम भेषजस्य गूगलो सुरभीर गंध गंधो अश्नुते। जो गूगल की धूप आदि लेता है उसे व्याधियां पीड़ित नहीं करती। अन्य द्वारा भूत प्रेत शाप आदि द्वारा भी वो दुखी नहीं किया जा सकता। गूगल के धुएं को सूंघने वाले के पास से द्रुतगामी अश्व और हिरण भागने के समान व्याधियां और विघ्न बाधा भाग जाते। चारों दिशाओं की ओर जैसे शेर दाड़ने पर हिरण चारों तरफ भाग जाते, ऐसे इस गूगल धूप से दुख व्याधियां चारों तरफ भाग निकले, ये हमारा वातावरण स्वच्छ हुआ। हे गूगल, तुम समुद्र से उत्पन्न हो या सिंधु देश में से प्रकट हुए हो, मैं तुम दोनों की प्रागट्य को प्रणाम करता हूं। इस वर्तमान रोग आदि को दूर करने के निमित्त मैं तुम्हारे नाम को कहता हूं, अतः यह प्राणी रोग रहित हो जाए। रोगी के आगे तुम इस प्रकार धूप करके अगर प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा संकल्प और गूगल धूप का प्रभाव रोगी आदमी को मदद कर सकता है, तो तुमको क्यों नहीं करेगा? आप जो श्वासोश्वास लेते हैं उसमें ऋण आयन होते हैं, ऋण ऊर्जा होती है, घन ऊर्जा होती है, और उस आयनों का ऊर्जा का आपके मन पर, आपके तन पर प्रभाव पड़ता है।